इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत निजाम इस्लामी पर उनके एतमाद का सबूत है। उलमा काउंसिल के अराकीन से कायदे इंकलाब इस्लामी का खिताब। हिंदुस्तान के मुमताज सहाफी और कालम नवेस मोहम्मद अहमद काजमी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम रहनुमाओं का रद्दमल, गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक, दारुल हुकूमत मनामा समेत पूरे मुल्क में अवाम के मुजाहरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sehattv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है khabrein@sehattv.ir। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें, मुलाहजा फरमाइए। कायदे इनकलाब इस्लामी ने नवे पार्लियामानी इंतखाबात में ईरानी अवाम की भरपूर शिरकत को इस्लामी निज़ाम की हिमायत और इस निज़ाम पर अवाम के मुकम्मल एतमाद का सबूत करार दिया है।
जुमेरात को तेहरान में कायद या क़यादती काउंसिल के इंतखाब के लिए उलमाए किराम की काउंसिल के सरबरा और अराकीन ने कायदे इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई से मुलाकात की। कायदे इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने इस मौके पर अपने खिताब में नवे पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम की बाबसीरत और भरपूर शिरकत की कदरदानी करते हुए इस वसी शिरकत के असरात और नतायज की वजाहत की और फरमाया कि पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम की भारी अक्सरियत की जानिब से की जाने वाली वोटिंग ने होश में लाने वाले तमाचे की तरह उन लोगों को नींद से जगा दिया और उन पर हकीकत वाजह कर दी है जो इस्लामी निज़ाम के बारे में दुश्मनों की तरह वहमो गुमान में मुब्तला थे। कायदे इंकलाब इस्लामी ने इस बात पर जोर देते हुए कि दर हकीकत अवाम ने इंतखाबात में फैसला कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, फरमाया कि अवाम ने 2 मार्च के इंतखाबात में मुखालिफ महाज से मुकाबला आरई के महाज पर अपनी ईमानी ताकत व बसीरत का इस्तेमाल किया और अपने इस कारनामे से इंतखाबात के लिए अवाम का जोश व जज्बा कम करने की दुश्मनों की कई महीनों की मनसूबाबंदी को नक्श बरआब कर दिया। कायदे इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने दीनी जमहूरियत और इसमें इंतखाबात की हैसियत व अहमियत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इलेक्शन निज़ाम का एक अहम उंसुर है और दीनी जमहूरियत इंतखाबात पर उस्तवार है। इस बिना पर जिसे भी इस्लामी निज़ाम पर यकीन होगा वो इंतखाबात में शिरकत को अपना फरीजा समझेगा, भले ही उसे कुछ मामलात में शिकवे भी हों। कायदे इंकलाब इस्लामी ने अमरीकी सदर के इस बयान की तरफ इशारा करते हुए कि वो ईरान के साथ जंग के बारे में नहीं सोचते जोर दिया कि ये बड़ी अच्छी बात है और तसव्वुरात से निकलने की अलामत है, लेकिन अमरीकी सदर ने आगे कहा कि हम पाबंदियों के जरिए ईरानी अवाम को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस सिलसिले में वो अब भी तसव्वुरात में मुब्तला है। कायदे इंकलाब इस्लामी ने कहा कि इस किस्म के तसव्वुरात के जारी रहने से अमरीकी हुकाम को नुकसान पहुंचेगा और उनका सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा, क्योंकि मुखालिफों का महाज खास तौर पर अमरीका 33 बरस पहले से ईरानी कौम पर पाबंदियां आयद करके खास तौर से गुज़श्ता 1 बरस के दौरान उनमें शिद्दत पैदा करके अवाम को इस्लामी निज़ाम से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबने 2 मार्च 2012 को इस्लामी निज़ाम के हक में वोटिंग और इससे अवामी लगाव का मुशाहिदा कर लिया है। कायद इंकलाब इस्लामी ने फरमाया कि गुज़श्ता सदारती इंतखाबात के बाद होने वाले हंगामों के पेश नज़र कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस्लामी निज़ाम से अवाम का एतमाद खत्म हो गया है, लेकिन 2 मार्च के इंतखाबात ने इस गलत और बेबुनियाद अंदाजे का ठोस और वाज़ह जवाब दे दिया।
हिंदुस्तान के मुस्लिम रहनुमाओं ने मुल्क के मारूफ सहाफी मोहम्मद अहमद काजमी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इरना के मुताबिक मुस्लिम रहनुमाओं के जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मारूफ सहाफी और तजिया निगार मोहम्मद अहमद काजमी को किसी सबूत के बगैर एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है जो हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इस बयान में कहा गया है कि दिल्ली के इसराइली सिफारतखाने के सामने होने वाले मशकूक बम धमाके के सिलसिले में मोहम्मद अहमद काजमी की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। हिंदुस्तान के मुस्लिम दानिश्वरों, मुख्तलिफ तंजीमों और उर्दू सहाफती एसोसिएशन ने मोहम्मद अहमद काजमी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। बाज़ तंजीमों ने आजाद सहाफी मोहम्मद अहमद काजमी की रिहाई के लिए मुल्क की तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। 13 फरवरी को नई दिल्ली के इसराइली सिफारतखाने की एक गाड़ी में मैग्नेटिक बम का धमाका हुआ था जिसमें मुबैना तौर पर सहयोनी हुकूमत की एक अहलकार जख्मी हो गई थी। इसराइल ने किसी सबूत के बगैर इस्लामी जमहूरिया ईरान पर इस धमाके में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया था, जिसकी हिंदुस्तान की हुकूमत ने तर्दीद की थी। यह ऐसी हालत में है कि दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े आमिल की हैसियत से ईरानी साइंसदानों और बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ले आम में इसराइल का किरदार किसी से पोशीदा नहीं है। मोहम्मद अहमद काजमी का शुमार हिंदुस्तान के मारूफ सहाफियों में होता है और मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के लिए वो काम करते रहे हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से चंद रोज कबल ईरान की हिमायत में एक मकाला तहरीर किया था, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अखबारात में छपने वाले अपने मुतादिद मकालात के जरिए खित्ते के मुल्कों के खिलाफ अमरीका और इसराइल की साजिशों को वो बेनकाब करते रहे हैं। इसराइल ने अपने सिफारतखाने पर हमले के बाद हुकूमत हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ा दिया था कि वो इस हमले में ईरान के मुलव्वस होने का ऐलान करे। हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के मुमताज हुर्रियत पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने सफर आजादी के साथ एक मुहिम का आगाज किया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ कश्मीर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
कॉम्प्रेस जमात लिबरेशन फ्रंट के सरबरा मोहम्मद यासीन मलिक ने सफर आजादी के तहत एक बार फिर एक मुहिम शुरू कर दी है। शुमाली कस्बा बांडीपोरा में एक अवामी इज्तिमा से खताब करते हुए मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी सफर आजादी के तहत गांव और शहर का दौरा किया और लोगों की राय को तहरीरी सूरत में अक्वामे आलम के सामने रखा, और अब उन्होंने यह फैसला किया है कि वो अक्वामे मुत्तहिदा की तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक बार फिर इस मुहिम का आगाज करेंगे, ताकि दुनिया को यह पता चले कि कश्मीरी लोग असल में चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि उनकी ये मुहिम हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद से पाक होगी, क्योंकि हम अपने जायज मुतालबे के हुसूल के लिए पुरअमन जदोजहद पर ही यकीन रखते हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो अपने मुजाहिरों के दौरान पुरअमन रहें। काबिल जिक्र है कि लिबरेशन फ्रंट का इस्तेदलाल है कि मसले कश्मीर का हल कश्मीर की मुकम्मल खुद मुख्तारी में मुजमिर है। हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से सिप्त मोहम्मद हसन, सहर आलमी नेटवर्क, श्रीनगर।
अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार में होने वाले एक बम धमाके में 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। नंगरहार के गवर्नर के तर्जुमान ने बताया है कि जुमेरात को जलालाबाद में होने वाले इस धमाके में 18 लोग जख्मी हुए हैं। अहमद जिया अब्दुल जैनी ने बताया है कि सड़क के किनारे गुलदान में रखा एक बम फट गया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार, 4 तलबा और 10 आम शहरी जख्मी हुए। उन्होंने इसी तरह बताया कि बुध की रात को भी इसी शहर में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकारों ने एक यूनिवर्सिटी तालिबा को तशद्दुद का निशाना बना के हलाक कर दिया है। तालिब इल्मों के जराए ने बताया है कि आले सऊद खानदान के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्क की किंग खालिद यूनिवर्सिटी की तालिबात पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा कर रही थी। आले सऊद हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों ने तालिबात को बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक तालिबा जां भाग और बहुत सी जख्मी हो गई। मुतादिद जख्मी तालिबात की हालत नाजुक बताई जाती है। किंग खालिद यूनिवर्सिटी की तालबात अपने मुतालबात के हक में 2 रोज से धरना दिए बैठी थी। दूसरी जानब सऊदी अरब की एक जेल में मोहम्मद बजादी नामी एक कैदी की भूख हड़ताल बदस्तूर जारी है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बजादी की भूख हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। जराए का कहना है कि मोहम्मद बजादी को अपने घर वालों से राबते की इजाजत नहीं दी जा रही और न ही ताहाल कोई फर्द जुर्म उन पर आयद की गई है। जराए के मुताबिक मोहम्मद बजादी पर भूख हड़ताल खत्म करने के लिए तशद्दुद भी किया जा रहा है। बहरीन के अवाम ने एक बार फिर मुल्कगीर मुजाहरे किए हैं और मुल्क पर कायम आले खलीफा खानदान की आमरियत के खात्मे का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तारुल हुकूमत मनामा के नवाही इलाके मुक्शा में होने वाले मुजाहरों की क्यादत इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बहरीनी रहनुमा नबील रजब कर रहे थे। दूसरी जानब बहरीनी अवाम ने बुध की रात शब्बेदारी की और शाही हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान शहीद होने वाले मोहम्मद इब्राहिम की याद में शमे जलाकर एहतजाज किया। मोहम्मद इब्राहिम जनवरी के महीने में सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता बहरीनी सिक्योरिटी एहलकारों के हमले में शहीद हो गए थे। मशरकी बहरीन के इलाके बनी साले में भी बुध की रात बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं। मुजाहरीन बड़े पुरजोश अंदाज में शाही हुकूमत के खात्मे और जमहूरी हुकूक की बालादस्ती के हक में नारे लगा रहे थे। बहरीनी अवाम ने कल जुमे के रोज मुल्क भर में आमरियत के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत का अज़्म जाहिर किया है। बहरीन में फरवरी 2011 से इनकलाबी तहरीक जारी है और लोग मुल्क में जमहूरियत के कयाम के लिए और शाही हुकूमत की आमरियत के खिलाफ मुजाहरे करते चले आ रहे हैं। सऊदी अरब ने मार्च 2011 में अपनी फौजें बहरीन में दाखिल की थी, ताकि बहरीन में आले खलीफा खानदान की हुकूमत को अवामी इनकलाब से बचाया जा सके। इनकलाबी तहरीक के आगाज से अब तक सऊदी और बहरीनी फौजियों के तशद्दुद आमेज इकदाम में सैकड़ों बहरीनी शहरी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। امریکی صدر باراک اوباما نے شام کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی نے سینٹ کی خصوصی کمیٹی کو بتایا ہے کہ صدر باراک اوباما نے پینٹاگون کو حکم دیا ہے کہ وہ شام کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ جنرل ڈیمسی کا کہنا تھا کہ اوباما نے پینٹاگون سے یہ بھی کہا ہے کہ شام کی فضائی نگرانی، نو فلائی زون کے قیام اور سمندری نگرانی کے معاملات کا بھی جائزہ لے۔ جنرل ڈیمسی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی سینیٹر جان مکین نے چند روز قبل شام کے خلاف فوجی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شام میں مارچ 2011 سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور مسلح افراد اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ شام میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ حکومت شام کا کہنا ہے کہ بیرونی ممالک کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد ملک میں بدامنی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، سعودی عرب، قطر اور ترکی ایسے ممالک ہیں جو اب تک شامی حکومت کے مخالفین کی حمایت کر رہے ہیں۔ شام کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی کھل کر مخالفت کی ہے۔
شام کی خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں شامی شہری بدھ کی شام دارالحکومت دمشق اور نواحی شہر حسکا کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے صدر بشار اسد کی اصلاحات کے پروگرام کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے اور بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دمشق کے سبا بہرات اسکوائر پر ہونے والے اس مظاہرے میں تیونس اور لبنان کے بعض سیاسی رہنما بھی شریک تھے۔ تیونس کی متحدہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل احمد اینوبیلی نے اس موقع پر کہا کہ شام بیرونی سازشوں کے مقابلے میں عرب دنیا کے اگلے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور شام کے عوام پورے عزم کے ساتھ بیرونی دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سرکردہ تجزیہ نگار اکرم مکنا نے اس موقع پر کہا کہ تحریک مزاحمت کی حمایت کی وجہ سے شام کو سازشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی نوجوان نسل نے ماضی میں بھی بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا ہے اور وہی شام کے دفاع میں پیش ہے۔ لبنانی صحافی محمد دیاب بھی اس مظاہرے میں شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام پوری ہوشیاری اور عوامی حمایت کے ذریعے موجودہ بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس مظاہرے میں شریک ایک اور سرکردہ شخصیت شیخ فائز نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بیرونی سازشیں شامی عوام کے عزم و ارادے میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی۔ شام میں صدر بشار اسد اور ان کے اصلاحاتی پروگرام کی حمایت میں یہ عوامی مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب بیرونی طاقتوں سے وابستہ شرپسندوں اور دہشت گردوں نے ملک میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کر کے عوام کو صدر بشار اسد کی حمایت میں مظاہرے کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ شام کے مختلف شہروں میں عوام کے خود جوش مظاہرے اس بات کی دلیل ہیں کہ شام کے عوام بدستور صدر بشار اسد کے حامی ہیں اور دہشت گردوں اور شرپسندوں سے متنفر اور بیزار ہیں۔ دوسری جانب صدر بشار اسد کی حمایت میں ہونے والے خود جوش عوامی مظاہروں نے مغربی حکومتوں کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے کہ صدر بشار اسد حکومت کرنے کا جواز کھو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی ادارے شام کے اندرونی معاملات میں مغرب اور بعض عرب حکومتوں کی مداخلت پسندانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طور بھی ان سازشوں میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں۔
لیبیا کی عبوری کونسل کے سربراہ مصطفیٰ عبدالجلیل نے ملک کی وحدت کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ مصراتہ شہر میں قومی میثاق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ عبدالجلیل نے کہا کہ فیڈرلزم کی باتیں ملک کو تقسیم کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عبوری کونسل تمام دھڑوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے اور ہم کسی کو بھی کنارے نہیں لگانا چاہتے۔ مصطفیٰ عبدالجلیل نے واضح کیا کہ لیبیا متحد تھا اور متحد رہے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیبیا کی عبوری کونسل کے سربراہ نے کہا کہ عبوری کونسل ملک کی تقسیم نہیں چاہتی۔ انہوں نے برقع کے عوام سے اپیل کی کہ وہ پوری طرح سے ہوشیار رہیں کیونکہ ان کے درمیان سابق حکومت کے بچے کچے عناصر بھی موجود ہیں جو لیبیا کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ مشرقی لیبیا کے بعض قبائلی رہنماؤں نے برقع نامی علاقے کو فیڈرل علاقہ قرار دے کر احمد زبیر سنوسی نامی ایک شخص کو مقامی شورا کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ برقع کا علاقہ قذافی کی موت کے بعد خود مختاری کا اعلان کرنے والا لیبیا کا پہلا علاقہ ہے۔ روس کے وزیر اعظم نے حالیہ صدارتی انتخابات پر مخالفین کے اعتراض پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سمجھایا ہے کہ وہ انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیں۔ یورو نیوز کے مطابق روس کے موجودہ وزیر اعظم اور حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ولادیمیر پوتین نے صحافیوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کو انتخابات میں شکست ہوئی ہے उन्हें शिकस्त पसंद नहीं है और ये बिल्कुल एक फितरी बात है। उन्होंने कहा कि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हुक्काम को कौम की आवाज सुनना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुखालफिन को भी वोट देने वाले अवाम की बात सुननी चाहिए। रूस के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि व्लादिमीर पुतिन 63% से जायद वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ताहम उनके मुखालफिन का कहना है कि वो नतीजे को कबूल नहीं करते क्योंकि इंतखाबात में बकौल उनके बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। फ्रांस के कौमी इदारे शुमारियात और इकोनॉमिक स्टडी सेंटर ने सन 2011 की चौथी सहमाही में खत्म होने वाली नौकरियों की तादाद 22,600 बताई है। फ्रांसीसी जराए ने इसी के साथ बताया कि सन 2011 की तीसरी सहमाही में खत्म होने वाली नौकरियों की तादाद 31,900 रही। इसी तरह फ्रांस में इस साल के दौरान गैर मामूली तौर पर रोजगार के मौके में कमी हुई है और 2011 की आखिरी छह माही में फ्रांस में 54,500 अफराद की नौकरियां खत्म हो गई हैं। यह ऐसी हालत में है कि फ्रांस की हुकूमत का दावा है कि सन 2009 से अब तक इस मुल्क में किसी भी नौकरी को खत्म नहीं किया गया है बल्कि 67,000 नए रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं, जिनकी वजह से रोजगार के मौके में 0.4% का इजाफा हुआ है। और नाज़रीन आखिर में हम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर पेश खिदमत हैं। इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत निजाम पर उनके एतमाद का सबूत है, उलमा कौंसिल के अराकीन से कायद इंकलाब इस्लामी का खिताब। हिंदुस्तान के मुमताज सहाफी और कालम नवीस मोहम्मद अहमद काजमी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम रहनुमाओं का रद्दमल, गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। बहरीन के अवाम की इंकलाबी तहरीक दारुल हुकूमत मनामा समेत मुल्क भर में अवाम के मुजाहरे। नाज़रीन खबरें अपने अख्तिताम को पहुंची, ताजा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए, पता है urdu.sehattv.ir। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।